अशीतम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम कृष्ण के संबंध में कृष्ण का हृदय भी मधुर है, उनका गमन चलना भी मधुर है, उनके अधर मधुर है, उनके उनका वदन मुख मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनका हास्य मधुर है। मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मतलब उनकी हर बात मधुर है, या माधुर्य के वे पति ही है, स्वामी है। मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरा वेणु मधुर है, और रेणु भी मधुर है। रेणु किसको कहते हैं? रेणु वेणु तो जानते हो, रेणु अच्छा कोई दिखा रहे रेणु को, देखो इस तरह के हाथ में क्या है, रेणु है। कृष्ण के हाथ में मधुर वेणु है, तो भक्तों के हाथ में रेणु है, और धेनु भी होती है। धेनु क्या है, कौन है धेनु? पानी मधुरा पादो मधुरो पानी क्या होता है? पीने का पानी नहीं, चक्र पानी। भगवान को क्या कहते हैं? चक्र पानी। तो जिनके हाथ में क्या है? चक्र, चक्र पानी। उनके हाथ मधुर है, उनके पैर मधुर है, पादो मधुरो। नृत्यम मधुरम सत्यम मधुरम नृत्य भी मधुर है। और उनका सख्य, उनके सखा या सख्य भाव मधुर है। मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् और क्या क्या मधुर है? गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीत, या तो वे स्वयं गाते हैं तो गायन मधुर है, या उनके संबंधित कोई गीत है वे सब मधुर की मधुर है। पीतम कोई पान करते हैं वह भी मधुर है। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम भुक्तम मतलब भोजन। भगवान जब भोजन करते तो माधुर्य है या मधुर भोजन करते हैं या मधुर भोजन करते हुए उनको देखना भी उसमें भी माधुर्य है। सुप्तम मधुरम सुप्तम मधुरम। फिर भोजन करने के बाद भगवान थोड़ा सो गए, उनका सोना भी कैसा है मधुर है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहाँ भगवान सोए हैं, पट्टनम ऐसा कुछ नाम है, श्रीरंग में तो वैसे लेटे हुए हैं। तो सोए हुए भगवान का दर्शन करने लोग आते हैं। सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम लकम मधुरम का रूप कैसा है, कैसा है बोलिए बोलिए तो सही, कितना मधुर है। बहुत कितना मधुर है। उस माधुर्य से कृष्ण स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं। एक समय खंबे में देखा, एक खंबे के पास से जा रहे थे तो खंबे में देखा तो नंद भवन का खंबा था चमकीला आईने जैसा। तो खंबे के समक्ष जब खड़े हुए तो उन्होंने ए वो कौन है, स्वयं ही थे। मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम। वैसे तिलक जब पहनते हैं भगवान तो भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले नासाग्रे वर मौक्तिकम। नाक में भी क्या पहनते हैं, मोती पहनते हैं। यहाँ पर नाकाग्रे नाकाग्रे वरमऊ की कम। वक्षस्थले कौस्तुभम और वक्षस्थल पर क्या है कौस्तुभ मणि है। करतले वेणु और हाथ में क्या धारण है वेणु। करे कंकणम और कुछ कंकन पहने यहाँ कलई में। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम और सर्वांग में क्या पहना हुआ है चंदनम सुललितम। कंठे च मुक्तावली और गले में पहनी है मुक्तावली मोती की माला। तो मोती की माला मानो ये सफेद है तो, और कृष्ण है घनश्याम, तो मानो अनुभव करते हैं भक्त जब देखते हैं मोतियन की माला पहने हुए भगवान, मानो एक एक मोती हंस है और उड़ान कर रहा है और पीछे बादल है घनश्याम। और मोर मुकुट पहना हुआ है भक्त, सोचते ये कोई इंद्रधनुष तो नहीं है। और उनके वस्त्रों की ओर देखते हैं तो उसमें चमचम है, चमक है, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला, वैजयंती माला पहने हुए भगवान। मधुराधिपते रखिनम मधुराधिपते रखिलम मधुराधिपते रखिलम तो हाथ में एक लखुटी रखते हैं, लाठी रखते हैं और कभी कभी उसके आधार से खड़े भी हो जाते हैं। उसको कहते यष्टि, यष्टि। मंदिर में भी विग्रह मुरली बजा रहे, राधा माधव और राधा श्याम सुंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आधार होता है सिर्फ, उसके आधार से खड़े हो जाते हैं, मुरली बजाते हैं या गाय चराते हैं, तो यष्टि कहते हैं। तो यष्टि मधुर है, सृष्टि मधुर है, दलितम मधुरम फलितम मधुरम चेतन भी हुआ, उद्धव प्रकट हुए कुसुम सरोवर के तट पर, फिर कथा हुई। उद्धव जी कथाकार थे और श्रोता बनी थी भगवान की महिषिया, 16,000 रानिया जो द्वारिका से अर्जुन ले आए थे उनको, उनकी रक्षा हेतु। तो उन्होंने जब कथा उद्धव से सुनी शुरुआत में, तो 16,000 रानियां बैठी थी कथा के प्रारंभ में। इन कथा के अंत में बस केवल उद्धव बचे थे, उद्धव थे और वज्रनाभ थे। सब रानियों का क्या हुआ? उन सभी ने कथा का जब श्रवण किया, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण से, तल्लीन हो गई, तत्लीन भगवान में लीन हो गए, लीन हो गई मतलब वो समाप्त नहीं हुई। कृष्ण भी रहे और वह रानिया भी रहे, किंतु भगवान के नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। ये कथा के माध्यम से यह संभव हुआ। जो सोच रही थी और खोज रही थी कृष्ण को कहा है कृष्ण, या तो कृष्ण तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ गए कृष्ण? लेकिन भगवान की कथा के श्रवण से यहाँ का ब्रज का सारा दर्शन उन्हें हुआ। आप तो समझो या तो केवल खेत ही है, यह तो कहा है वृंदावन, हमारे गांव में तो ऐसा खेत ऐसे पेड़ होते हैं। वो खेत, ये खेत साधारण खेत नहीं है, ये वृक्ष भी साधारण नहीं है, और यह कृष्ण है। इसको समझने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है? श्रवण करना होता है, सुनना होता है। ब्रज को देखना है, वृंदावन का दर्शन करना है, और यहाँ के कृष्ण को देखना है। अधरम मधुरम वाले, वदनम मधुरम, वेणु मधुरा, रेणु मधुरो, पाणी मधुरा, पादो मधुरो, ऐसे कृष्ण को भी देखना है तो क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है, और फिर सुनी हुई बातों को कहना भी पड़ता है। तो इस अभ्यास से, इस श्रवण कीर्तन के अभ्यास से मैं सोच रहा था कि अब उस उद्धव प्रसंग का स्मरण हुआ, तो हमने सोचा कि हमारे इस कीर्तन के अंत में भी ब्रेकफास्ट लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। आप सभी प्रवेश करोगे। कुछ दिन शेष है, इस समय प्रवेश नहीं होगा तो फिर पुनः आना पड़ेगा आपको। प्रवेश करने की इच्छा अभिलाषा से इस साधना को और आगे बढ़ाना होगा। ब्रज जैसा है, जिन तत्वों से बना है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तं त्रिलक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। एक ही लक्ष्मी नहीं जिनका आप अभी दर्शन किए, यहाँ कितनी लक्ष्मियां हैं? सहस्र, मतलब लक्ष्मी सहस्र शत भी है, केवल हजार ही नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों खरबुद अरबुद की संख्या में लक्ष्मियां यहाँ है। एक एक गोपी लक्ष्मी है, कृष्ण की लक्ष्मियां है गोपी, नारायण की लक्ष्मी है लक्ष्मी, नारायण की लक्ष्मी लक्ष्मी, कृष्ण की लक्ष्मी कौन?
गोपी।
तो वैकुंठ में तो एक ही लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ कितनी लक्ष्मियां है? इंदिरा, हाँ, शश्वदत्र ही, इसीलिए धाम का महिमा है। वैकुंठ में तो एक लक्ष्मी और वृंदावन में तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, और सेव्यमानम, सेवा के लिए बड़ी संभ्रमित कंठित तत्पर रहती है ये सारी गोपिया। तो वैकुंठ की गोपी भी यहाँ, नॉट गोपी, वैकुंठ की गोपी तो होती ही नहीं, गोपियां कहाँ होती है? एक गीत में भक्त गाए हैं, और वैकुंठ में हम क्यों जाएंगे? वैकुंठ में न तो नंद बाबा है न तो यशोदा है, क्यों जाएंगे हम वैकुंठ? और यशोदा नंद बाबा भी नहीं है, मतलब नंद नंदन भी वहां नहीं है, तो क्यों जाएंगे वैकुंठ? क्या है वैकुंठ में? वहां न तो राधा है न तो गोपी है, नंद यशोदा न तो नंद बाबा है, क्या पड़ा है उस वैकुंठ में? तो क्या स्वर्ग जाए? उससे अच्छा स्वर्ग है, हाँ, स्वर्ग जाना चाहिए नहीं? क्या हुआ, सारा संसार तो स्वर्गवासी बनना चाहता है, फलाना स्वर्गवासी हो स्वर्गवासी हो स्वर्गवासी। आपको ब्रश का रंग लग गया, इसलिए आप न तो आप स्वर्ग जाना चाहते हो न तो आप वैकुंठ जाना चाहते हो। कृष्ण जहाँ है अपना निवास वही जहाँ श्री कृष्ण वास करते हैं, ये जो सारे डेवलपर्स ये कॉलोनीज बना रहे हैं वो भी कभी कभी लिखते हैं, वृंदावन में रहो, वृंदावन में अपना मकान लो, क्यों? कृष्ण का वास यहाँ है, कृष्ण आप वहाँ रहे जहाँ कृष्ण रहते हैं, बढ़िया से ऐसा कुछ लिख लेते हो, बात सही है, कृष्ण यहाँ रहते हैं। बेल वन में है, ये बेल वन जो श्री वन से भी जाना जाता है। इस वन के दो नाम, एक बेल वन और दूसरा श्री वन। ये दसवां वन है, एक 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 करके कितने वन पार किया आप लोगों ने, आप भक्तों ने 10 वन पार कर चुके आप, या 10वें वन में प्रवेश किए हो आप। बस अब दो वन बाकी है। तो कल ही आपने यमुना को पार कर लिया और तो 7 वन उस पार है और 5 वन इस पार, मतलब पूर्वी, ये पूर्व दिशा है। तो यमुना के पूर्वी तट पर 5 वन है। तो यहाँ जो कृष्ण बलराम भाई है, इस ब्रज को उन्होंने बांट लिया है, तो यमुना के उस पार कृष्ण का साम्राज्य माना जाता है और इस पार बलराम का। हम लोग बलराम के साम्राज्य में पहुंच गए। इस बलराम जी का दर्शन आपको कब होने वाला है, कब कराओगे? कल? कल बड़ी छलांग मारने हो लोग हो आप। आज हम किसी वन में पड़ाव है तो कल लोह वन से होते हुए प्रवेश होगा कहाँ, महावन में। जिस महावन में दाऊजी का, दाऊजी के बड़े विग्रह, ब्रज के सबसे बड़े विग्रह दाऊजी का, दाऊजी के भैया कौन है? तो कृष्ण कन्हैया कौन है? दाऊ जी का भैया है। तो दाऊ जी का, कृष्ण कन्हैया के जो भैया दाऊ जी है, दादा मतलब बड़े भाई, तो बड़े भाई बड़े हैं। हाँ, कौन कौन अधिक बलवान है, कृष्ण की बलराम? बलराम, हाँ बलराम। ऐसे आपस में श्रील प्रभुपाद एक समय ऐसा प्रश्न पूछे भक्तों से, तो भक्त आपस में लड़ रहे थे। कोई कह रहा था बलराम बलवान है, तो कोई कह रहे थे कृष्ण बलराम बलवान है, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, बलराम कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद क्या, देखो देखो कृष्ण बलराम यहाँ खड़े है देखो। तो भक्त जब देखने लगे तो श्रील प्रभुपाद पूछे किसके आधार से कौन खड़ा है? कृष्ण के आधार से बलराम खड़े हैं। तो जिन्होंने आधार दिया है बलराम को वे कौन है? इसलिए प्रभुपाद कहे कृष्ण बलवान है। तो ये 5 वन बलराम का साम्राज्य किंगडम, वैसे वहां का कृष्ण का किंगडम हम कहते हैं, लेकिन राधा रानी इस बात को नहीं मानती है। तुम कौन हो, दिखा दो, कोई कागज पत्र है तुम्हारे पास कोई? आपस में लड़ते हैं, राधा कौन है? राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी कौन? राधा। ईश्वर की भी ईश्वरी स्वामिनी कौन है? राधा। तो राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपिनी राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूप वाली राधा वृंदावन की ठाकुरानी मालकीन। तो भद्रबान में थे काल आप थोड़े समय के लिए, क्या भगवान जब वत्सपाल थे भगवान तो उन्होंने क्या किया, वहाँ बछड़े लेके आते थे तो एक असुर भी बछड़ा बन के आया और भगवान ने तुम तो असुर हो, तुम बछड़े थोड़े ही हो, भगवान ने उसको पकड़ लिया, उसके पैर पकड़ लिए और फेंक दिया। तो घुमाया तो उसके साथ उसके प्राण चले गए और उस असुर का वध हुआ। तो कौन से असुर? वत्सासुर। वो असुर बछड़ा बन के आ गए तो वत्सासुर। तो वो एक लीला जब वत्सपाल थे भगवान। फिर भांडीर वन में तो आप कुछ समय बिताए, महाराज आए थे, बाकी लीलाओं का स्मरण दिलाया आपको माधव महाराज, उनका नाम थोड़ा और भी लंबा कुछ कठिन है, हम प्रेम से उनका माधव महाराज जी कहते हैं, अधिक भक्त विश्रम्भ विश्रम्भ ऐसा कुछ भक्ति विश्रम्भ और भी कुछ है आगे हो गया भक्ति विश्रम्भ माधव ओके। तो भांडीर बन भी कई सारी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध। राधा और कृष्ण का वह कुश्ती भी हो गई, कुश्ती खेले कौन कौन? राधा और कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ। श्रीदामा को देखे आप? श्रीदामा श्रीदामा बंसी भट्ट में राधा के भ्राता, उनका दर्शन किए कि ना? वे भी प्रतीक्षा में है, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए तो मिले श्रीदामा से, उन्हें सोचा कि श्याम सुंदर आ गए, फिर मार्ट में थे कल आप, मार्ट से थोड़ा और आगे, मार्ट और भांडीर वन के मध्य में तो मार्ट, मार्ट मतलब क्या, किसको कहते हैं? मटके को, मटका होता है, मटका गढ़े, एक गढ़ा मिट्टी का, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, देखा आपने ऐसा दृश्य? आप ढो सकती हो? तो इस मार्ट में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन वहां हुआ करता था और वहां से वितरण होता था सारे ब्रज में। तो घड़े बनाते वहां, तो मिट्टी के घड़ों का बहुत सारा उपयोग ब्रज में उस समय तो होता ही था, कृष्ण के समय, आज भी होता है कृष्ण के समय, जो भगवान की नित्य लीला में और बाह्य भौम वृंदावन में भी हम देखते हैं। घड़ों का उपयोग, मटकों का उपयोग, जो मंथन होता है कि यशोदा मंथन करती है, वो यशोदा ही मंथन करने वाली नहीं है, हर घर में उद्धव जब आए, शायद उद्धव ही होंगे या अक्रूर, वो सुन रहे थे, उन्होंने वृंदावन ने ब्रज में जब प्रवेश किया तो उनको घुर 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 ऐसी आवाज ध्वनि से सारा ब्रज गूंज रहा था। आवाज किसकी थी? मंथन की, दही मंथन की आवाज सर्वत्र, घर घर में दही के बड़े बड़े घड़े मटके छाछ से भरे हैं, कुछ दही से है, कुछ मक्खन से है। रसोई बनाते उसके लिए भी मटकी के घड़े मटके, जिसमें भोजन करते हैं, परोसते हैं भोजन, वो किसमें? वो मटकों में या मिट्टी के बर्तनों में। कुछ स्टोरेज करना है, स्टोरेज टैंक्स, वो भी किसमें? मटकी के घड़ों में। जो जिसमें यशोदा ने मंथन किया और फिर चली गई दूध को संभालने, कृष्ण को ऐसे पटक दिया तो कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया? मटकी फोड़ी। तो मटकी अगर पीतल की या और किसी धातु की होती तो फोड़ सकते थे? और गोपियां जब गोरस बेचने के लिए ले जाती है तो जो बर्तन होते हैं जिसमें छाछ है, दूध है, दही है, मक्खन है, तो घड़े भी कैसे? मट्टी के। फिर कृष्ण ए टैक्स दे दो, टैक्स साकरी खोर में दान घाटी टैक्स दे दो। तो टैक्स कुछ पैसा होगा, इनके जेब में पैसे तो नहीं हुआ करते थे, ये 10 रुपए ले लो या ठन्नी ले लो चौकी का टैक्स। तो किस रूप में वो टैक्स चाहते हैं? मक्खन मक्खन दो, दही दो। और आसानी से नहीं देती, नहीं देती तो क्या करते कृष्णा? और कृष्ण के मटकी को या तो पूरा फोड़ते या थोड़ा सा ही सुराख बनाते, और नल जैसा जब गिरने लगता आगे जाके फिर पी रहे है। तो मटके के ये घड़े बर्तन होने से इस प्रकार की लीला के लिए भी सुविधा है। अच्छा है, ऐसे 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 घड़ों में जब भोजन पकता है तो उसका जो स्वाद, उसका क्या पूछना, अपने स्वाद कभी लिया ही नहीं होगा। हम जब छोटे थे हमारे घर में चूल्हा भी मिट्टी का और जिसमें रसोई बन रही वो भी मिट्टी का बर्तन, और जिसमें हम भोजन करते, ये केवल सुनी पढ़ी हुई बात नहीं, हमने अनुभव कि हमने जब छोटे थे तो हम हमारा भोजन मिट्टी के बर्तन में हुआ करता था। अरे वाह, नो प्लास्टिक। तो इको फ्रेंडली जिसको करें, इको फ्रेंडली। हाँ तो बड़ी समस्या है या पर्यावरण का, प्लास्टिक है, क्या क्या नहीं है, रिसाइकलिंग। तो मिट्टी के बर्तन टूट गए तो फिर मिट्टी हो गई, ना बदबू है ना तो कुछ है, मिट्टी मिट्टी से मिट्टी बन गए। तो हर दृष्टि से ये बर्तन, स्वास्थ्य के दृष्टि से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण ही कहते हैं ना, पर्यावरण के दृष्टि से, हर दृष्टि से, और सस्ते भी। मतलब आपको कई ट्रांसपोर्ट खनिज माइंस है, उसमें से आपके अल्यूमिनियम आयरन क्या क्या, नीचे जाओ जमीन में धरती में 2-3-4 किलोमीटर, वहां से ऊपर, वहां से फिर रेल में कई ले आओ, फिर क्या क्या करो सारा प्रोसेसिंग, फिर वहाँ बर्तन बनाओ, वहाँ से जो आगे ट्रांसपोर्टिंग, कितना सारे झमेले है, उग्र कर्म है। कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या, मिट्टी तो मिट्टी है और पानी भी यमुना का है, मिला दो और पहिया है उसके ऊपर रखो और उसको आकार दो थोड़ा, या तो सूर्य उसको सुखा सकता है या अग्नि। हो गए बर्तन बन गए, रेडी टू गो, लोकल प्रोडक्ट, इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उसमें दिमाग लड़ाने की आवश्यकता, फिर कृष्ण को भूलो और ये करो वो करो क्या क्या करो सारा उग्र कर्म, जिसके कारण फिर धरती को, धरती में क्या करते, सुराख बनाते, गड्ढे बनाते हैं, जिसके कारण और भी कई कारण, अलग प्रकार के गैसेस है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण बर्फ पिघल रहा है, पिघलना शुरू हो गया, और जिसके कारण समुद्र का जो जल बढ़ रहा है, जिसके कारण बंबई एक दिन जल समाधि बंबई की होगी या और शहरों की भी। ये हमारा भविष्य है, व्हाट इज द फ्यूचर, कोई पूछता है संसार का क्या भविष्य है, क्या किया जाए, एक साइंटिस्ट को पूछा क्या किया जाए इस स्थिति में, उसने कहा, इंग्लैंड का बहुत बड़ा प्रसिद्ध फिजिसिस्ट, उसने कहा कि अब एक ही बात हो सकती है, अब इस पृथ्वी को छोड़ के और कहीं जाओ, लाइफ बोट होती है ना, जब बड़ी बोट में बैठ के, तो बड़ी बोट में कोई खतरा है, पानी आ गया या डूब रही है, तो फिर उसके साथ लाइफ बोट्स होती है, तो लोग उसमें उतार उतर के वो लाइफ बोट में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम पर निर्भर नहीं रहना, हम पर अब इतना विश्वास था, ये था वो था, लेकिन अब हमसे कुछ संभव नहीं है, जान बचानी है तो आप और कहीं जाओ। तो ये मार्ट जैसा ग्राम स्मरण दिलाता है या उपाय समझाता है, नेचुरल लिविंग, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग तो कृष्ण की कथाएं, कृष्ण का उपदेश, ये हाई थिंकिंग है, और सिंपल लिविंग सिंपल ईटिंग। सिंपल ईटिंग मतलब क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये कैसा हुआ ईटिंग, सिंपल ईटिंग। और फिर मटनम चिकनम बिरयानीम फिशम फिश फिशम, संस्कृत बना दिया थोड़ा, ये कैसा हुआ, ये सिंपल ईटिंग नहीं हुआ, ईटिंग कैसा हुआ, हाई ईटिंग। ब्रज का कल्चर, ब्रज का भाव, ब्रज की संस्कृति, ब्रज का सब सादगी, ब्रज की कृष्ण बलराम वैश्य के पुत्र थे, नंद बाबा कौन थे, वैश्य थे, उन्होंने क्या किया, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, कृषि कृषि का कार्य किए नंद महाराज, और गोरक्षा नंद महाराज किए, ब्रजवासी किए, तो मार्ट से फिर आप आगे बढ़े आज प्रातःकाल, फिर कहाँ पहुंचे आप, बेल वन पहुंचे, कुछ बेल खाए, तो बेल जानते हैं ना, बेल, बेल जूस मिलता है, क्या इस परिक्रमा में मिल रहा है?
नहीं,
आपको नवदीप मंडल परिक्रमा में आना होगा। कोई प्रॉमिस ही हो हिंदी भाषियों की, अभी नवदीप मंडल परिक्रमा भी हो रही है। वैसे नाम हाट बंगला भाषियों की भी होती है, रशियन परिक्रमा अलग से होती है, इंग्लिश, चार परिक्रमाएं चल रही है नवदीप में। वहाँ के यहाँ का बेल वन में तो आए, लेकिन बेल का कुछ पता ही नहीं चला, गंध भी नहीं। तो उसका स्वादन आप नवदीप मंडल परिक्रमा में कर सकते हो। तो कृष्ण जब वहाँ आते थे, वे फल भी खाते, बेल के फल भी खाते, और इस बेल के फलों का गेंद बना के वे खेलते भी। उसने फेंक दिया, फिर उसने उठा लिया, उसको फेंक दिया, उसका बॉल बना के गेमिंग चलता, गेम चलती उनकी बेल मन में। तो इसी मन में, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, श्री वन, लक्ष्मी का वन, लक्ष्मी का दर्शन किया आप, तो कुछ प्रार्थना किया आप, सबको सुख संपत्ति, नहीं भूल गए, हुआ क्या आपको? न तो आप स्वर्ग जाना चाहते हो, न तो लक्ष्मी को प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी देही जब करते, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कुछ रंग चढ़ रहा है ब्रज का। तो हुआ, तो लक्ष्मी बहुत समय से क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। और इतनी तपस्या के उपरांत भी उनको कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। इस वन में रास क्रीड़ा भी होती है, तो रास क्रीड़ा में भी प्रवेश नहीं हो रहा है, हमको भी उपन्ना नहीं मिल रहा है। Okay, मिल गया। तो तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत, तो लक्ष्मी को रास क्रीड़ा में प्रवेश क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग कुछ लोग 25 सालों से आ रहे हैं, तो 25 सालों से कम देख रहे हैं लक्ष्मी वहाँ तपस्या कर रही है। अगर रास क्रीड़ा में प्रवेश होता तो दर्शन नहीं होता अगले साल, लेकिन 25 सालों से हम देख रहे हैं, और 25 सालों से ही नहीं, बहुत समय से, सुचिराम बहुत समय से उसने व्रत लेके रखा है, तो भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस पर चर्चा एक समय हुई, चर्चा हो रही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कौन थे, वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट, अरे चर्चा हो रही है श्री रंगम में, दक्षिण भारत में एक बड़ा वैष्णव, महान वैष्णव तीर्थ श्री रंगम में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे। चैतन्य महाप्रभु वहां रहे चतुर्माश में, 4 महीने रहे, तो जिनके घर में रहे थे वे थे वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में खूब हास परिहास चलता रहा, विनोद पूर्वक कुछ बातें कहते चैतन्य महाप्रभु और श्री रंग वेंकट भट्ट। तो एक समय की बात है, वे चर्चा कर रहे थे, श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण तोवा। तो वेंकट भट्ट का परिवार और धाम ही प्रसिद्ध था लक्ष्मी नारायण के पूजा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रसन्न थे वेंकट भट्ट की लक्ष्मी नारायण पूजा देके, प्रसन्न तो थे, लेकिन एक समय उन्होंने पूछा, क्यों ए वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट आए और वार्तालाप शुरू हुआ। कहते, तुम्हारी लक्ष्मी तो बड़ी पतिव्रता शिरोमणि है, बड़ी साध्वी है, नारायण की भारिया लक्ष्मी, लेकिन वो हमारे जो कृष्ण है, वृंदावन के गोप श्री कृष्ण, उनको प्राप्त करने के लिए उसके प्रयास चलते रहते हैं, उनका अंग संग करना चाहती है, ये तो उचित नहीं है। साध्वी होते हुए, पतिव्रता शिरोमणि होते हुए, और किसी के साथ संग, और किसी के पति के का संग, ये उचित नहीं है ना। कई कह रहे नहीं है, कई सोच रहे। तो हुआ तो प्रयास तो बहुत समय से कर रही है लक्ष्मी कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण के अंग संग के लिए, कृष्ण के रास क्रीड़ा में प्रवेश के लिए, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। वैसे ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए था, और पति क्या, और किसी के पति का पीछा करना, और किसी पति के संग अंग संग की प्राप्ति की वांछा, लेकिन ये प्रयास सफल भी नहीं हो रहा। तो ये साफल्य सफलता नहीं मिल रही है, इसको कहने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नागपत्नी का एक वचन कहे। नागपत्नी जहाँ बेल वन है, जमुना के पार जाओगे तो आपको वहां कालियादह मिलेगा। कालियादह दूर नहीं है, जहाँ बेल वन और कालियादह हमने सामने आर पार मिलेंगे। तो वहां की जो कालिया दमन की लीला में तो कालिया के फणों के ऊपर कृष्ण खड़े हुए नृत्य भी किया, और कुछ समय के उपरांत नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की। उस प्रार्थना में नागपत्नी ने पत्नियों ने कहा, भगवान से प्रश्न पूछा, ये कैसे संभव हुआ। कश्यानुभाव अश्य न देव विद्महे, और आगे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारा। ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। नाग पत्नियां कह रही है कि हमारे पति देव को आपके तव अंग्री रेणु स्पर्श अधिकार, आपके चरणों का जो धूल है उसको प्राप्त करने का अपने मस्तक पर ये अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, न देव विद्महे, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। और वो तुलना करते हुए आगे कहती है, जो श्री ललना लक्ष्मी है यदवान छया, उस रज की, उस ब्रज की रज या कृष्ण के चरणों की वो रेणु, वो रज के प्राप्ति के लिए वो लक्ष्मी विहाय कामान, सारे और सुख सुविधा को छोड़ के, वैकुंठ का वैभव छोड़ के, सुचिरम धृतव्रता, बहुत समय के लिए वो व्रत कर रही है, तपस्या कर रही है वह बेल वन में, उसको भगवान के चरणों की रज प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमारे पतिदेव को आपने इतनी सारी धूल दे दी, ये कैसे संभव हुआ? तो ये नागपत्नी का पत्नियों का वचन चैतन्य महाप्रभु ने कह के ये सिद्ध कर रहे थे कि यह लक्ष्मी को भगवान का अंग संग या रास क्रीड़ा में प्रवेश या उनके चरणों की धूल नहीं मिल रही है। तो फिर आगे बात बढ़ती है, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप। तो वेंकट भट्ट कहते कि हमारे नारायण और आपके कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है, तो हमारी लक्ष्मी ने आपके कृष्ण की वांछा की अंग संग या चरणों की धूल चाही, तो उसमें कोई गलत तो बात नहीं है, इस संबंध में आप क्यों ऐसा हास परिहास कर रहे हो? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि वेदों की जीव जो क्या कहते हैं श्रुतिया है, श्रुति भी एक ग्रंथ है, तो श्रुति शास्त्र, श्रुति और स्मृति, तो ये श्रुति बन गए मूर्तिमान, उन्होंने रूप धारण किया, उन्होंने खूब तपस्या की, ध्यान धारणा की, उनको कृष्ण प्राप्ति हो गई, उनको कृष्ण प्राप्ति हुई, लेकिन तुम्हारे लक्ष्मी को क्यों कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही है? तो वेदों की जो श्रुतियां है, श्रुति श्रुतियों को कृष्ण प्राप्ति हुई, लक्ष्मी को कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे कहे, ये संवाद चैतन्य चरितामृत में आया हुआ है, श्रुति पाय लक्ष्मी ना पाय इथे की कारण। तो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुए कृष्ण, श्रुतियों को प्राप्त हुए, तो क्या कारण है? भट्ट कहे यह प्रवेशित नरे मोरमन, ये हम तो नहीं कह सकते। वेंकट भट्ट कहे तो ऐसे विषय में ये तो बड़ी ऊंची बात है, एक गहरी बात है, गंभीर बात है, ऐसे बातों में तो हमारा मन प्रवेश नहीं करता है, हम तो क्षुद्र है, और आप कौन हो? वो कह रहे कृष्ण एक सजीव लक्षण, प्रभु कहे ना तुम्हें साक्षात सही कृष्ण जान निज कर्म। आप चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट, आप तो साक्षात कृष्ण हो, इसका मर्म तो जानने वाले आप ही हो, हम क्षुद्र क्या जानेंगे, आप ही कहो, आप ही समझाओ लक्ष्मी को क्यों नहीं मिले श्री कृष्ण। तो प्रभु कहते हैं माधुर्य सर्वे चित्त करे आकर्षण। तो कृष्ण तो माधुर्य से आकृष्ट होते हैं, ब्रज लोकेर भावे पाइये ताहर चरण। तो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है तो ब्रज के लोग, ब्रज के लोग कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज जन। तो ब्रज के जो भक्त है उनका क्या ज्ञान है, कृष्ण को क्या समझते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं समझते हैं। वैकुंठ के लोग तो नारायण को ईश्वर समझते हैं, ईश्वर भाव है उनमें, लेकिन ब्रज के जो माधुर्य, ब्रज का जो माधुर्य है उस ब्रज के जो जन है, ब्रजा जन रंजना, वे कृष्ण को कभी स्वामी या कोई ईश्वर वगैरह नहीं मानते। तो क्या करते, कभी कभी ब्रज के भक्त चैतन्य महाप्रभु ने कहा केह तारे पुत्र जाने उलुखले बांधे। उनको तो कभी कभी अपना पुत्र समझ के, यशोदा है ना, वो तो कृष्ण को अपना पुत्र समझती है, और ये नटखट कन्हैया को कभी कभी क्या करती है, उखल के साथ बांध देती है। ये ब्रज के लोगों की समझ है, कृष्ण को ऐसा समझती है, अपना पुत्र समझती है। तो कुछ उनका पुत्र समझते हैं तो केह सख्य जाने जिनी चढ़े तार कांधे। तो कोई तो समझते है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण तो हमारा मित्र है, कृष्ण कौन है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है। तो भांडीर वन में क्या किया, कृष्ण और बलराम दो दल में बट गए, और एक दल में कौन थे, एक और एक एडिशनल व्यक्ति आया था, प्रलंबासुर आया, प्रलंबासुर बड़ा लंबा आसुर, इसीलिए क्या कहते हैं, केवल आसुर ही नहीं और केवल लंबासुर ही नहीं, प्रलंबा विशेष लंबा आसुर वहां आ गया, छोटा बन के आ गया, और एक ग्वाल बाल का वेश धारण किया था। कौन से ग्वाल बाल का, जो ग्वाल बाल उस दिन अब्सेंट था, वो आया नहीं था, तो वैसा ही बन गया वो असुर, ग्वाल बाल जैसा बन गया। फिर आगे दो दल में बट गए और एक एक दल जीत गया, दूसरे दल का हार हो गई। तो कृष्ण के दल का क्या हुआ था, कृष्ण हार गए। तो ऐसा तय हुआ था कि जो हारेंगे तो जीतने वाले पार्टी को कंधे पर लेके चलेंगे। तो कृष्ण हार गए तो कृष्ण के कंधे पर भी, ये नहीं कि और मित्रों के कंधे पर चढ़ेंगे, कृष्ण के कंधे पर नहीं चढ़ेंगे, कृष्ण कोई विशेष नहीं है, जैसे और मित्र है। तो जो जो पराजित हुए उनके कंधे पर चढ़ेंगे, तो और मित्रों के कंधे पर भी चढ़े और कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ गए। कौन चढ़े, श्री रामा चढ़े। और फिर बलराम किसके कंधे पर चढ़े, प्रलंबासुर, प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में था, तो कृष्ण का पक्ष भी पराजित हो गया और प्रलंबासुर भी पराजित हो गया। तो प्रलंबासुर के कंधे पर बैठ गए बलराम। तो यहां से कुछ दूरी तक उनको ढोके ले जाना था, फिर वहां उतर जाएंगे, वहां तक घोड़े बन जाएंगे। तो बाकी भक्त लोग भी उठा के ले जा रहे थे, कृष्ण भी उठा के ले जा रहे थे, तो वहां उतार तो दिया। इन प्रलंबासुर ने क्या किया, जहां गंतव्य स्थान था वहां से भी आगे बढ़ गया, और धीरे धीरे पहले तो चल रहा था, फिर दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते और दौड़ते उसने क्या हुआ, उड़ान किया, जैसे हवाई जहाज होता है ना, पहले तो आगे जाता है बड़े रफ्तार से, फिर क्या करता है, उड़ान करता है, उड़ान भरा। प्रलंबासुर सुर ने क्या किया, उड़ान भरा। तो कुछ क्षणों में आकाश में बलराम कहां थे, वहां पर थे, वहां से आपको देख रहे थे। तो बलराम ने कुछ मजा चख लिया, सारे दृश्य देख रहे थे। कृष्ण ने एक बार देखा था, तृणावर्त जब आए थे तो तृणावर्त भी कृष्ण को लेके उठा के आकाश में ले गया, कृष्ण ने वहीं से सारे ब्रजमंडल का दर्शन किया, दृश्य देखा, फोटो खींचे होंगे। बलराम को ऐसा मौका नहीं मिला था, तो प्रलंबासुर की रचना से उनकी इच्छा पूरी हो गई। और कृष्ण को तो, कृष्ण ने तो देखा सारा ब्रजमंडल, मेरी कब बारी, तो प्रलंबासुर ने उनकी सेवा की, उनको। तो कहने का तात्पर्य इस संदर्भ में ये है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वेंकट भट्ट को कि ब्रज के जो भक्त है कृष्ण को ईश्वर वगैरह नहीं समझते, ईश्वर भाव तो वैकुंठ से सीमित है, वृंदावन में उनको कोई नहीं पूछता, वृंदावन में कोई आरती नहीं उतारता। फिर वृंदावन से जब मथुरा गए तो फिर मथुरा वासी आरती की प्लेट लेके आए और जय जगदीश हरे शुरू हो गया। हाँ, जब क्रूर ले गए ना उनको, कृष्ण बलराम का क्रूर जब मथुरा ले गए, वृंदावन को क्रॉस किया तो सारे लोग बाहर दौड़ने लगे, आरती प्लेट और फ्लावर माला और क्या क्या, घंटी बजा रहे, शंख ध्वनि हो रही है। तो वहां भी थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन की अपेक्षा थोड़ा सा वह ईश्वर भाव है, द्वारका में और अधिक है, और वैकुंठ में तो केवल ऐश्वर्य भाव ही है। लेकिन वृंदावन में ऐश्वर्य भाव का गंध भी नहीं है, ये माधुर्य मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वही बात कही जा रहे, या तो माधुर्य है, मधुर ही मधुर, भगवान मधुर, उनके भक्त ही मधुर, उनका संबंध भी बड़ा मधुर है, माधुर्य रस भी है, श्रृंगार रस है और रस है, लेकिन ईश्वर भाव नहीं है। तो ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने ब्रज जान, ईश्वर जाने नहीं कोनो संबंध मानन। तो ब्रजेंद्र नंदन मानते हैं उनको ब्रज जान, लेकिन उनको ये ईश्वर ईश्वर होने का, कृष्ण ईश्वर है ये ज्ञान उनको ब्रजवासियों को नहीं है। ब्रज लोकेर भावे यही कर ये भजन, सही ब्रज पाय शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। तो इस भाव से, ब्रज भाव, वृंदावन का भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनसे ये सारे भाव शुद्ध है, फिर ब्रजेंद्र नंदन प्राप्त होते हैं। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगत हैया, ब्रज ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया। तो उन्होंने कहा कि जो जो श्रुतिगण है, श्रुतिगण श्रुतिगणों ने भी जो आराधना की, कृष्ण की आराधना कैसे की, अनुगत हैया, अनुगत हुए, अनुगत्य स्वीकार किया उन्होंने। अनुगत मतलब अनु मतलब क्या, अनु मतलब पीछे पीछे, और गत मतलब जाना, अनुग हम लोग रूपानुग है, प्रभुपादानुग है, यही मोरई अभिलाष नहीं आगे क्या, यही निवेदन धर सखीर अनुगता कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तो इसका अभाव रहा, लक्ष्मी ने जो आराधना की कर रही है तो श्रुतियों ने ये अनुगत्य स्वीकार किया, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद अज्ञाय करीबो सेवा चरणार विंद। तो ललिता विशाखा की आज्ञा से, अब उनकी आज्ञा से और ऐसे कई उनको संगठित है, सारा ऑर्गेनाइजेशन है गोपियों का। तो अनुगत्य अनिवार्य है, इसके बिना ब्रज में, ब्रज या ब्रज की सेवा में, ब्रज धाम में प्रवेश नहीं है। बाह्य स्तरे गोपी देह ब्रजे जबे पाइला, सही देहे कृष्ण संगे रस क्रीड़ा कैला, तो इनको श्रुति गणों को उनको क्या उनको गोपी देह भी और गोपी भाव भी, गोपी भाव मतलब अनुगत्य भी उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने रास क्रीड़ा में प्रवेश भी किया। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेय सीता हार, देवी वा अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। तो जो गोप जाति है मतलब गोप जाति वृंदावन की गोप गोपिया, गोपिया भी दो प्रकार की गोपिया, कौन कौन से दो प्रकार है, एक बड़ी बुजुर्ग गोपिया और युवतिया, दोनों के अलग अलग भाव है कृष्ण के प्रति। बड़ी गोपिया क्या समझती है, कृष्णा कृष्ण के साथ उनका वात्सल्य है, कृष्ण हमारा पुत्र है, कृष्ण हमारा पुत्र है। लेकिन जो युवती है वो क्या समझती है, उनके साथ माधुर्य श्रृंगार का संबंध। तो गोप जाति वृंदावन की जो गोपिया है कृष्ण को अपनी प्रेयसी समझती, कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी प्रेयसी है कृष्ण की। तो गोपिया भी कैसी है, कृष्ण की प्रेयसी है। तो कृष्ण की प्रेयसी उस भाव में अनुगत्य के साथ, और वैसा ही देह भी गोपी भाव गोपी देह गोपी रूप होने से ही कृष्ण का संग उस माधुर्य भाव में माधुरी रस में संभव है। नहीं तो कोई साधारण देवी दुर्गा देवी या लक्ष्मी देवी भी हो या कोई स्त्री हो बंबई फंबई की और कई की, वैसे आ गई ट्रेन से उतरी और प्रवेश करना चाहती है मथुरा, छलांग मारी ट्रेन से तो चलो कहाँ है कृष्णा। कैसे स्त्रियों कैसे देवियों को कृष्ण दूर रखते हैं, गेट आउट दूर रहो, उनको प्रवेश भी नहीं, क्योंकि क्या क्या नहीं है, भाव नहीं है गोपियों का, भाव नहीं है गोपियों का, देह नहीं है गोपियों जैसा अनुगत्य का जो भाव है, हम छोटी है आप बड़ी हो, आप हमें भी अधिकार दो, हमें भी थोड़ा रेकमेंड करो ना, हमको भी सेवा मिले कृष्ण की, ये भाव। लक्ष्मी चाहे सही देहे कृष्ण रसंग संग, तो चैतन्य महाप्रभु के, तो लक्ष्मी तो चाहती है उसका अपना जो देह है उसी देह में प्रवेश करना चाहती है, ये तो संभव नहीं है। अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ लक्ष्मी को जान, लक्ष्मी लक्ष्मी कितने गहने कितने अलंकार क्या क्या पहनती है, लक्ष्मी तो स्वयं लक्ष्मी है, कुछ लक्ष्मी का भाव है, कुछ चिंता है कितना सोना कितना कहाँ से लाएंगे, इतने अलंकार कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, ये जड़ जवाहर कहाँ से आएंगे, लक्ष्मी को कोई चिंता है, लक्ष्मी तो उसी की है, वही लक्ष्मी है। तो लेकिन गोपियों का और तो लक्ष्मी को थोड़ा अपना देह का अभिमान है, अपने देह का अपने सौंदर्य का अपने वैभव का, वो ईश्वर की रानी है, नारायण की रानी है लक्ष्मी, नारायण, इसीलिए तो गोपिया जब भगवान के मुरली की नाद को सुनती है तो श्रृंगार करती हुई गोपिया क्या करती है, श्रृंगार वही बंद हो जाता है उनका, एक आंख में काजल डाल दिया दूसरे आंख में काजल, लेकिन मुरली को बीच में सुना तो दौड़ेगी, ये भाव गोपियों का है। लक्ष्मी अपना श्रृंगार कर रही है कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, तो लक्ष्मी क्या सोचेगी, नहीं नहीं तुम बजाते जाओ मुरली, मेरा श्रृंगार नहीं पूरा हुआ और 2 घंटे तो लगेंगे। काजल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब चाहे मुरली बजाते हो आप, भाव अलग है। क्या अंतर किसका है? भाव का अंतर है, भाव का अंतर है। ये धाम अलग अलग धाम कैसे बनते हैं? अलग अलग भाव है। क्या बाजार भाव की बात नहीं है? हाँ, यम यम वापी स्मरण भावम भाव, भक्ति भाव। तो भगवान भूखे है, किसके भूखे है? कौन कहता है कि कृष्ण खाते नहीं? कौन कहता कृष्ण नहीं खाते? शबरी जैसा खिलाते नहीं, शबरी जैसा खिलाते नहीं, इसीलिए वो खाते नहीं। तो या विदुर जैसा, विदुरानी जैसा नहीं खिलाते, इसीलिए वो नहीं खाते। नहीं तो जरूर खाते तो खूब है। तो भाव, भाव चाहिए। तो गोपियों का भाव, ब्रज भाव, गोपियों का भाव, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, न तो उस भाव को प्राप्त करना चाहती है। कृष्ण को चाहती है, लेकिन वो भाव को अपनाना नहीं चाहती। और यही समस्या है, और इसीलिए तपस्या कर तो रही है। तो कृष्णा, क्या आप लक्ष्मी का कुछ भविष्य बता रहे हो क्या? ज्योतिषी हो आप? भी नहीं देखा आपने और कह रहे हो कभी नहीं मिलेंगे, फिर आपको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। हुआ गोपी का अनुगत ही आना कैल भजन, अन्य देही ना पाइये रास विलास। तो कोई रास क्रीड़ा चाहता है तो अन्य किसी देह से वो संभव नहीं है। किस देह में संभव है? केवल गोपी रूप में संभव है। अरे वो, अरे वो, आप आज मानसरोवर जाओगे तो वहाँ वो मानसरोवर आपको स्मरण दिलाता है। वहाँ भी भोलेनाथ आ गए डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेके। कहाँ रास क्रीड़ा, कहाँ हो रहे रास क्रीड़ा, कहाँ हो रहे? अरे गले में सर्प है, गोपियां डरेगी, कोई बिच्छू उतर जाएंगे नीचे काटेंगे, गले में कान में बिच्छू है, और ये सारे उनके भूतेश्वर है, भूतनाथ है, तो ऐसे सारे उनके संगी साथी। तो हुआ, नहीं 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 आप ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर क्या करना होगा आपको? भी गोपी देह, गोपी भाव, तो वो कहाँ से कहाँ प्राप्त करेंगे? यहाँ स्नान करो, तो अपना डमरू और त्रिशूल लेके जटा के साथ सर्पों के साथ कूद पड़े जल में। ऊपर जब आए तो गोपी बन के आ गए। प्लीज कम दिस वे, ये रास्ता है, चलिए आपको ले चलते हैं। पहले तो रोक लिया था ना, स्टॉप, आगे नहीं बढ़ सकते। जब गोपी भाव, गोपी रूप हुआ, आपका स्वागत है, सुस्वागतम शंकरी। नारदी भी कहते हैं, नारदी बन गए, नारदी गोपी। उन्होंने बस कुसुम सरोवर में स्नान किया था, तो यहाँ शंकर जी स्नान किए, गोपी भाव को प्राप्त, गोपी रूप को प्राप्त हुए, और फिर गोपेश्वर भी कहलाए, गोपीश्वर। तो कोई कहते गोपीश्वर महादेव, मतलब गोपियों के ईश्वर, ये सही हो सकता है? कॉपियों का ईश्वर तो है, या कोई कंपटीशन है क्या? गोपियों के ईश्वर तो कृष्ण है, ईश्वर एकला कृष्ण आर सब बस कृष्ण ईश्वर है, आर सब जिसमें शिव जी भी है, शंकर ब्रह्मा वरुण इंद्र चंद्र सारे कौन है, उनके भृत्य उनके सेवक है, उनके नौकर चाकर है, तो गोपियों का अन्य गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करके शिव जी भी अधिकारी बनते हैं, राजक्रीड़ा का अधिकार उनको भी प्राप्त होता है। तो अंत में इस संवाद में पूर्वे भट्टेर मने एक छिल अभिमान, तो इस संवाद का उद्देश्य और भी था। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सर्वोपरि होने की बात को सिद्ध करना चाह रहे थे। नारायण नारायण है, लेकिन नारायण में कितने गुण है? 60 गुण है। कृष्ण में कितने हैं? 64। ट्रेडिशनल जो 4 गुण है, ये भी सारा माधुर्य है कृष्ण का, जो और किसी में नहीं, नारायण में भी नहीं है, श्री राम में भी वो नहीं पाओगे आप, अन्य किसी अवतार में नहीं, देवी देवताओं को तो भूल ही जाओ। वो 4 कौन से माधुर्य है? रूप माधुर्य कृष्ण का, रूप माधुर्य कृष्ण का, वेणु माधुर्य, वेणु जो कृष्ण वेणु बजाते हैं, और कृष्ण का लीला माधुर्य, और क्या बच गया? प्रेम माधुर्य। तो कृष्ण का प्रेम माधुर्य, कृष्ण का लीला माधुर्य, कृष्ण का रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, इसे कृष्ण श्रेष्ठ सर्वोपरि, नारायण भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। गोपिया जब एक समय जब कृष्ण को खोज रही थी, कहा कृष्णा 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 कृष्णा, कहा हो कृष्णा कर, तो कृष्ण वैसे कहीं दूर नहीं थे, वही छिपे हुए थे कृष्ण कुंजों में। तो गोपियों को खोजते हुए आती हुई देखा, तो कृष्ण कुंजों से बाहर आए, कुंज से बाहर आए, वहां खड़े हो गए, नारायण बन के खड़े हो गए, चतुर्भुज रूप धारण किया, तो नारायण बन के खड़े हो गए। तो गोपिया सभी से पूछ रही थी, कहा आपने देखा कृष्ण को? आपने कृष्ण को देखा? आपको कृष्ण को देखा? तो नारायण के पास जब आई तो नमो नारायण, थोड़ा नमस्कार तो कर लिया, और पूछा नारायण से, पूछा हे नारायण, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? तो जिस भाव से वो पूछताछ हुई, उस भाव को, तो नारायण नारायण नहीं रह पाए, थे कृष्ण ही लेकिन थोड़ा नाटक कर रहे थे, चलो देखते हैं, तो उनके दो हाथ गिर गए, हाथ में मुरली आई और मुरली बजाने लगे। तो गोपिया नारायण में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ये तो ईश्वर है, ये तो कृष्ण का विस्तार है, लेकिन हमको चाहिए कौन? कृष्ण चाहिए। तो मथुरा के कृष्ण भी नहीं चाहिए, द्वारका के कृष्ण भी नहीं चाहिए, वैकुंठ के भगवान भी नहीं चाहिए, अयोध्या के, हमको तो कौन चाहिए? हमारे ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन चाहिए हमको, हमको माधव चाहिए, हमको श्याम सुंदर चाहिए। तो ये जो वेंकट भट्ट, उनका अभिमान था, एक बात का गर्व था उनको, तो उस गर्व का दमन करने हेतु ये संवाद आगे बढ़ाया जा रहा है। तो श्री नारायण हरेन स्वयं भगवान, तो वे समझते कि हमारे नारायण ही सर्वोपरि है, नारायण से और कोई बड़ा ऊंचा है नहीं, ऐसी समझ और श्री संप्रदाय के वेंकट भट्ट की थी। इस बात को चैतन्य महाप्रभु नोट किए थे, 4 महीने रहते थे उनके साथ। तो श्री वैष्णवेर भजन सही सर्वोपरि होय, यही तार सर गर्व प्रभु करिते खंडन। तो उनके गर्व का खंडन करना चाहते थे, अभिमान को मिटाना चाहते थे। परिहास द्वारे उठाय एतेक वचन, तो हास परिहास में चर्चा शुरू की, लेकिन विषय तो बड़ा गंभीर था और उद्देश्य भी बड़ा, कुछ विशेष कारण था। स्वयं भगवान कृष्ण यही तो निश्चय, तो चैतन्य महाप्रभु कहे वेंकट भट्ट तुम समझ लो, कृष्णस्तु कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु नारायण स्वयं, ये भागवत का सिद्धांत नहीं है। कृष्णस्तु एते चांश कला पुंसाम, ये जो अन्य अवतार है ये तो उनकी कला है, उनके विस्तार है, उनकी विभूतियां है। गोपिका रमन रहित नारे नारायण, तो इसीलिए गोपिकाओं का गोपियों का मन नारायण में स्थिर नहीं हो सकता। नारायण एर का कथा श्री कृष्ण अपने गोपिका रहस्य कराइए हो नारायण, तो वही बात जो नारायण को देखी तो उन्होंने जो कृष्ण की पूछताछ की वही बात वो कहे। तो एत कही प्रभु तार गर्व चूर्ण करिया, तारे सुख दीते कहे सिद्धांत फिराइया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट का गर्व को चूर्ण किए और श्री कृष्ण सर्वोपरि होने के सिद्धांत की स्थापना किए। कृष्ण नारायण ऐसे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी देह नहीं होय। तो फिर पुनः थोड़ा ताकि अधिक दुखी नहीं हो, इसलिए उन्होंने अंत में अरे ठीक ही है, ठीक है, इट्स ऑल वन, एक ही है बात तो एक ही है, नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं, एक ही है। तो थोड़ा फिर आके लेकिन सिद्धांत की बात तो कही थी, समझाई ही थी और साथ साथ